ओम शांति। आज हमारे बीच सम्माननीय हमारे आदरणीय राजयोगी देवी भ्राता मोहन सिंघल भाई जी उपस्थित हैं। हम सब करतल ध्वनि से आपका आज की सभा में हार्दिक स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं, अभिनंदन करते हैं। मैं भाई जी का परिचय आप सबके साथ शेयर करना चाहूंगी। भ्राता मोहन सिंघल भाई जी का जन्म यूपी के देहरादून जिले में सन 1946 में हुआ। आप 1963 में लखनऊ विश्वविद्यालय से आपने स्नातक डिग्री प्राप्त की। उसके पश्चात 1967 में इंडियन स्कूल ऑफ माइंस धनबाद से आपने इंजीनियरिंग डिग्री प्राप्त की। उसके पश्चात आप ONGC में SE के पद पर कार्यरत रहे। लगभग 28 वर्ष तक सर्विस करने के पश्चात आपने 1996 में वॉलंटरी रिटायरमेंट लिया और संस्था के लिए अपने आप को जनमानस की सेवा में संपूर्ण रीति से समर्पित कर दिया। सन 1962 में जब आप स्नातक की पढ़ाई कर रहे थे तब आप प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वर विश्वविद्यालय के संपर्क में आए और संस्था के साथ सेवाओं के लिए हमेशा के लिए आप जुड़ गए। बिहार, आसाम, गुजरात में आप इस संस्था की कई शाखाओं को खोलने के विशेष रूप से निमित्त बने। वर्तमान समय आप इस संस्था के ज्ञान सरोवर परिसर में एकेडमी कोऑर्डिनेटर के पद पर अपनी सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। सन 1988 से आप साइंटिस्ट एंड इंजीनियरिंग विंग के नेशनल कोऑर्डिनेटर के पद पर कार्यरत हैं। आपके निर्देशन में अनेक कैंपेन देश और विदेश में ऑर्गेनाइज किए जाते हैं। सन 1992 में HRD मिनिस्टर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया श्री अर्जुन सिंह जी के द्वारा आपको पर्यावरण श्री के अवार्ड से सम्मानित किया गया है। एक बार आपके इस अवार्ड के लिए हम सब जोरदार तालियों से अभिनंदन करते हैं। इसके अलावा आपने कई राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में भी हिस्सा लिया है। ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के क्षेत्र में भी आपको इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ एजुकेशन फॉर वर्ल्ड पीस तथा कॉमनवेल्थ एसोसिएशन फॉर द एजुकेशन एंड ट्रेनिंग ऑफ एडल्ट द्वारा सन 2004 में इंटरनेशनल अवार्ड भी प्रदान किया गया है। आपने अब तक करीब 500 से ज्यादा लेक्चर तथा कार्यशालाएं आयोजित की हैं। आपने मानव उत्थान के लिए USA, UK, बांग्लादेश, नेपाल आदि आदि देशों में अपनी सेवाएं प्रदान की हैं तथा अनेक मानव आत्माओं की सेवा के लिए आपने कई प्रदर्शनियों का भी निर्माण जगह जगह पर किया हुआ है। इसके साथ एक और विशेष बात आप सबको बताना चाहेंगे कि जब ब्रह्मा बाबा 1969 में अव्यक्त हुए 18 जनवरी के दिन हमारे मोहन सिंघल भाई जी बाबा के ही अंग संग थे। बाबा की कर्मातीत अवस्था को आपने बहुत नजदीक से देखा है। 2 दिन बाबा के साथ रहे तो हम सब चाहेंगे कि बाबा की कर्मातीत अवस्था का जो अनुभव आपने किया वो हम सबके साथ शेयर करें। वैसे आज का आपका विषय भी बहुत अच्छा है, मन जीते जगत जीत। तो कैसे हम मन को जीत कर जगत जीत बनेंगे, हम सब हमारे आदरणीय मोहन सिंघल भाई जी से सुनेंगे। ओम शांति।
ओम शांति। एक बार पुनः बोलें, ओम शांति। हमारी आदरणीय दादी जानकी जी कई बार हम सबको केवल ओम शांति ही नहीं बल्कि आत्मा के जो दूसरे गुण हैं उसकी भी स्मृति दिलाती हैं और दादी जी कहते हैं ओम शांति के साथ साथ हम लोग और बुद्धि में क्या रखें, ओम आनंद, ओम प्रेम, ओम पवित्रता, ओम सुख, ओम ज्ञान, ओम शक्ति, यानी कि आत्मा के जो सभी गुण हैं वो स्वतः ही ओम शांति के उच्चारण के साथ साथ हमारी बुद्धि में आ जाने चाहिए। तो इसलिए हम सब सदा इस बात का भी लक्ष्य रखें कि ओम शांति के साथ जैसे शांत स्वरूप में स्थित होने का अपने को हम पुनः भान कराते हैं, स्मृति दिलाते हैं, ऐसे ही अन्य गुणों की भी स्मृति दिलाएं। और जैसा बहन जी बता रहे थे आज का विषय कौन सा विषय है, मन जीते जगत जीत। जब भी जीत शब्द सुनते हैं, कोई भी क्षेत्र में विजय होती है तो क्या होता है, खुशी होती है। और जब जगत जीत की बात आती है, जब छोटी सी बात में जीत होती है, कोई खेल का क्षेत्र हो, पढ़ाई का क्षेत्र हो, कोई बिजनेस का हो, परिवार में संबंधों का हो, कोई भी छोटे क्षेत्र में भी विजय होती है तो उसमें खुशी होती है। और जब बाबा कहता है जगत जीत की बात विश्व पर, तो कितनी ना बेहद की खुशी हम बच्चों को होनी चाहिए। और साथ ही साथ बाबा उसका पुरुषार्थ भी बता देता है कि जगत जीत कैसे बनेंगे, कैसे बनेंगे, जो आज का विषय मन जीते जगत जीत। जितना जितना हम अपने मन के ऊपर, संकल्पों के ऊपर विजय प्राप्त करते चलते हैं, और जैसा बाबा ने हमेशा कहा है, वैसे तो बाबा ने हम बच्चों को बहुत खजाने दिए हैं, अनगिनत खजाने हैं, ज्ञान का खजाना, गुणों का, शक्तियों का, आदि आदि। फिर भी बाबा समय प्रति समय हमें दो खजानों की विशेष स्मृति दिलाते हैं। कौन से दो खजाने, एक है संकल्प रूपी खजाना और दूसरा समय रूपी खजाना। तो संकल्प और समय ये हमारे बहुत बड़े खजाने हैं। तो जब मन जीते जगत जीत की बात आती है तो हमारी भारतीय संस्कृति में भी मन के ऊपर बहुत कुछ कहा है। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। मन जीते जगत जीत, माया जीते जगत जीत। मन चंगा तो कठौती में गंगा। मन अगर शुद्ध है, अच्छा है, तो जैसे गंगा हमारे घर पे ही है। और गीता में भी क्या कहा है, सर्वशास्त्रमय शिरोमणि, मन मना भव, तन मनाभाव या धन मनाभाव या संबंध मनाभाव नहीं, मन मनाभाव, मन को मुझ में लगा। तो इसीलिए सबसे बड़ी जो कला है, सबसे बड़े से बड़ा जो पुरुषार्थ है वो है मन को जीतना। हम सब पढ़ा करते थे कि पहले जमाने में भी कोई राजा होते थे, वो अगर जब विश्व महाराजन चक्रवर्ती राजा बनना चाहते थे तो क्या किया करते थे, अश्वमेघ यज्ञ किया करते थे। और अश्वमेघ यज्ञ में क्या करते थे, यज्ञ करते थे और एक घोड़े को छोड़ देते थे और उस घोड़े के पीछे पीछे पूरी राजा की सेना चलती रहती थी और घोड़े के गले में तख्ती लगी रहती थी कि फलाने राजा ने ये घोड़ा छोड़ा है और अश्वमेघ यज्ञ रच रहे हैं, जो उनकी अधीनता स्वीकार करता है वो इस घोड़े को रास्ता दे दे, घोड़ा आगे बढ़ता जाएगा, और जो उनकी अधीनता स्वीकार नहीं करता है वो युद्ध करे आगे। तो हर चीज का कोई ना कोई भाव होता है, बाबा ने बताया है। तो ये भी अश्वमेघ यज्ञ, हाँ कौन सा है अश्व, हाँ कौन सा अश्वमेघ यज्ञ है जो बाबा ने कहा है। बस एक तो जब आत्मा का ये शरीर, और सबसे बड़ी से बड़ी तीव्र गति किसकी है, मन की गति है। तो मन इसको, जैसे कि हम सब बाबा के जो बच्चे पुरुषार्थी हैं, हमने ये मन रूपी घोड़ा इसको कंट्रोल किया हुआ है और इसको छोड़ा है, और जो दुश्मन की सेनाएं हैं, कौन सी सेना जो हमारे मार्ग में बाधा बनती हैं, यही हमारी मानसिक कमजोरियां जो बाबा ने बताया, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ईर्ष्या द्वेष आलस्य परचिंतन परनिंदा, ये जितने हैं ये सब जैसे सेनाएं हमारे इस मन को अपने वश में करना चाहते हैं। हमारे पीछे तो पूरा शिव बाबा की सेना है, जो बाबा ने जो हमें गुणों का शक्तियों का ये जो खजाने अनेक दिए हैं, ये सब सेनाएं हमारे साथ हैं। लेकिन अपोजिशन की जो सेनाएं हैं, ये मन की कमजोरियों की, ये सब हमारे से सदा युद्ध करते रहते हैं। तो इसीलिए इस जगत जीत बनने के लिए जो ये हमने अश्वमेघ यज्ञ रचा है, जो बाबा का ना, जो बाबा ने कहा रुद्र अविनाशी गीता ज्ञान यज्ञ, पूरा का पूरा क्या नाम है, उसके अंदर सारा का सारा ज्ञान का रहस्य आ जाता है। तो इस अश्वमेघ यज्ञ की सफलता, ये हमारा सबसे पहला लक्ष्य हो, तभी हम जगत जीत बनेंगे। और इसमें चाहिए हमारे मन, उसका पूरा सहयोग। मन को भक्ति मार्ग में तो कह देते हैं क्या करें भाई, मन बड़ा चंचल है, मन को विजय प्राप्त करना, बस मन भाग जाता है, ये कह के छोड़ देते हैं। बाबा का भी मुझे जैसे बताया गया, ब्रह्मा बाबा के साथ रहने का भी काफी मौका मिला 6-7 साल तक, और बाबा की अंत में कर्मातीत अवस्था देखने का भी मौका मिला। हम सब ने सुना है, हमारी आदरणीय दादियां हमारे वरिष्ठ भाई सुनाया करते थे। बाबा भी जब शुरू में बाबा को ये ज्ञान हुआ 1936-37 में, तो बाबा ने भी ये देखा, क्योंकि बाबा देखा जाए, बाबा शिव बाबा कहते हैं मैं साधारण वृत्तन का आधार लेता हूं। तो बाबा भी लौकिक रीति से भले बहुत अनेक विशेषताओं संपन्न था, लेकिन परिवार वाला था, उनके भी पत्नी थे, बच्चे थे, पुत्र पुत्रियां पुत्र वधु सब थे, हीरे जवाहरात का व्यापारी भी था, धन कमाते थे, परिवार की पालना, साथ ही साथ बहुत दानी प्रवृत्ति के। तो ये सब होते हुए भी जब ज्ञान का आभास बाबा को हुआ, तो बस बाबा ने देखा कि ये मन जो है ना, वास्तव में बार बार भाग जाता है, टिकता नहीं है। मन कहाँ भागता है, जहां पर हमारा कुछ बुद्धि का जुड़ाव होता है, जहां हमारा लगाव होता है, मोह होता है। तो बाबा ने भी देखा मन बार बार भाग रहा है, कभी परिवार की तरफ, पत्नी की तरफ, बच्चों की तरफ, व्यवसाय की तरफ, अलग अलग जगह। तो बाबा ने मन को कैसे जीता, हम सब ने पढ़ा है यज्ञ में भी पहले 2 डायरियां होती थी, एक डायरी में तो बाबा ने पहले ये पक्का किया, क्या कि मैं आत्मा, लिख लिख के पक्का किया बाबा ने, मैं आत्मा हूँ, जसोदा आत्मा है, निर्मल आत्मा है, नारायण आत्मा है। जसोदा बाबा की लौकिक युगल का नाम था, नारायण लड़के का नाम था, और निर्मल शांता दादी जी, पर दादी जी ने बोलते हैं, वो उनका वो बाबा की पुत्री। इस तरीके से सब तो बाबा ने भी अनुभव शुरू में किया होगा कि भाई इधर मन भागता है, तो बाबा ने लिख लिख करके पक्का किया, हाँ मैं आत्मा हूँ, जसोदा आत्मा है, ये सब आत्मा है। और केवल पक्का ही नहीं किया, ये बाबा को फिर धीरे धीरे उस स्थिति में बाबा स्थित होता गया। और उसका पहचान क्या, उसकी पहचान यही है कि जब भी मन अगर भागता है और जब मन स्थित हो जाता है और सबको हम आत्मिक दृष्टि से देखते हैं, वो आत्मा भी आत्मिक रूप में स्थित हो जाती है। बाबा से जब हम मिलते थे, बस बाबा कितनी बार आओ बच्चे, आओ मीठे बच्चे, आओ प्यारे बच्चे, हाथ फैला देते थे और बस हम बाबा की बाहों में चुंबक की तरह खींचते चले जाते थे। और बस एकदम कुछ क्षणों में ही विदेही स्थिति का आभास होता था, अशरीरीपन का आभास होता था। क्यों? क्योंकि बाबा ने आत्मिक स्थिति को इतना पक्का किया था, मन को धीरे धीरे इतना वश में कर लिया था कि बस जैसे ही बाबा के सानिध्य में आते थे, बाबा दृष्टि देते थे, हम भी विदेही हो जाते थे। कुछ में क्षण मिनटों तक स्थिति का अनुभव करते थे, फिर बाबा जैसे हाँ ऐसे थपथपा के, हाँ बच्चे आओ, तो जैसे फिर से हम देह में आते थे, बाबा फिर टोली खिलाते थे, हालचाल पूछते थे, और फिर एक जाता था, फिर दूसरा आता था, तीसरा आता था। इस तरह बाबा कुछ क्षणों के लिए भी आत्मिक स्थिति का, मन जीते जगत जीत, उसका अनुभव कराते थे। तो एक ये हम पक्का करें कि क्या मैंने भी बाबा की तरह ऐसा पुरुषार्थ किया है मन जीतने का, आत्मिक स्थिति में स्थित होने का, कि हम जिसको भी दृष्टि दें बस वो आत्मा देह भान से परे हो जाए, उसे देह का आभास न रहे। एक तो बाबा ने ये पुरुषार्थ किया। बाबा हम सबके सामने लक्ष्य है ना, मन जीते जगत जीत का, तो बाबा के साथ साथ अगर हम जितना चलते रहते हैं, बाबा ने जो पुरुषार्थ किया, हम भी बहुत सहज रीति से जगत जीत बनते चलेंगे। लेकिन दूसरा पुरुषार्थ और इससे भी ज्यादा है। आत्मिक स्थिति का तो रोज हम मुरली में सुनते भी हैं, कोशिश भी करते हैं, योग करते हैं, और सफलता भी नंबरवार मिलती है। लेकिन एक बात बाबा ने जो और कही है, क्या कही है बाबा ने, रोज रात्रि को सोने से पहले इनकी दरबार लगाओ। ये जो मन बुद्धि संस्कार, ये आपके जो सूक्ष्म कर्मचारी हैं, इनकी दरबार लगाओ। तो बाबा ने भी यही किया। हम सबका अनुभव है, हम बैठते हैं लेकिन मन तुरंत ही एकाग्र नहीं होता, मन भाग जाता है। जहां पर भी भले बाबा ने अभी सर्टिफिकेट हम बच्चों को दिया है कि विकारी संकल्प नहीं चलते चाहे अधिकतर बच्चों के, लेकिन व्यर्थ संकल्प या जिस समय योग में बैठते हैं तो दूसरे अन्य सेवा के संकल्प या वो उधर तो बुद्धि भाग जाती है ना। ये भी मन जीते जगत जीत का लक्षण नहीं है मन जीतने का। तो बाबा ने मन को कैसे कंट्रोल किया, ये गौर से सुनना आप। क्या किया बाबा ने, बाबा ने मन को पत्र लिखा। कैसे पत्र लिखते हैं, एक हमारे वरिष्ठ भाई थे आनंद किशोर दादाजी, तो बाबा का हैंड रिटन, हाँ बाबा सिंधी में लिखते थे, तो सिंधी में लिखा पत्र था, उसका हिंदी अनुवाद करके हम सब पुराने भाइयों को दादा ने दिया था। क्या लिखा बाबा ने पत्र को, मैं मन को एड्रेस किया, हे मन मैं आत्मा राजा हूं, तू मेरा मंत्री है, कर्मचारी है, तुझे मेरे वश में होना चाहिए, लेकिन हे मन तूने अपने को इतना शक्तिशाली बना लिया और मुझ आत्मा राजा को कमजोर कर दिया, और मैं आत्मा राजा कमजोर होता चला गया, तू शक्तिशाली होता चला गया, मैं तेरे कहने पर तेरे पीछे पीछे भागता रहा, तू मुझे भटकाता रहा, बहुत समय तक मैं भटकता रहा, लेकिन हे मन अब मैं तुझे कह देता हूं कि मैं तेरे कहने पर अब नहीं चलूंगा। क्यों? क्योंकि मैं आत्मा राजा अपनी स्वस्थिति में स्थित हो गया हूं, अब तुझे मेरे कहने पर चलना होगा, क्योंकि तू मेरा मंत्री है और मैं आत्मा राजा हूं। बाबा उस अपने स्वस्थिति में स्थित होके बाबा ने ये पत्र लिखा। इसी तरह बाबा ने बुद्धि को भी पत्र लिखा कि हे बुद्धि तू भी मन के कहने पर, मन के पीछे पीछे, मन के साथ साथ भागती रही और तुम दोनों ने मिलकर मुझे आत्मा राजा को बहुत कमजोर कर दिया, लेकिन अब मैं तुझे भी कह देता हूं हे बुद्धि अब तुझे मेरे कहने पर चलना होगा और अब मैं तेरे कहने पर नहीं चलूंगा क्योंकि मैं आत्मा राजा हूं। और इस तरह बाबा अपने स्वमान की सीट पर स्थित होके बाबा ने ऑर्डर किया तो मन और बुद्धि सब बाबा के कंट्रोल में आ गए। अब हमें भी ये देखना है होता क्या है। हम चाहते तो हैं कि फलानी शक्ति का जब हम आवाहन करते हैं फलानी शक्ति आए, कभी सहन शक्ति, कभी समेटने की शक्ति, मन हमारे कहने पर चले, लेकिन फिर भी मन नहीं चलता। क्यों? क्योंकि हम अपने स्वमान की सीट पर बैठ करके मन को ऑर्डर नहीं करते। लौकिक में भी कोई गवर्नमेंट सर्वेंट होता है, ऑफिसर होता है बड़ा भी, प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट भी हो, जब तक वो अपनी सीट पर है तब तक सब उसका ऑर्डर मानते हैं, लेकिन जब वो रिटायर हो गया या ट्रांसफर हो गया या अपनी सीट पर नहीं है, इलेक्शन हार गया, कुछ भी, तो फिर उसका ऑर्डर कोई नहीं मानते। तो ऑर्डर देने के लिए पहले हमें अपने स्वमान की सीट पर स्थित होकर बैठना जरूरी है, जो बाबा ने किया। तो ऐसे ही बाबा ने हम सबको बहुत बहुत स्वमान दिए हैं। कितने स्वमान हैं, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, आज भी बाबा ने कहा मैं मास्टर ज्ञान सूर्य हूं, सारे विश्व की आत्माओं को प्रकाशित कर रहे हूं, प्रकाश दे रहा हूं, शक्ति दे रही हूं, मैं आत्मा मास्टर सर्वशक्तिवान, बाबा के दिल तख्त नशीन, बाबा की मस्तक मणि हूं, बाबा के नैनों का नूर हूं, बाबा मेरे इन कर्मेंद्रियों के द्वारा विश्व की समस्त आत्माओं की सेवा कर रहे हैं, मैं शुद्ध शक्तिशाली, इतने सारे स्वमान दिए हैं बाबा ने। उन स्वमान में हम स्थित होकर के और उसके बाद हम जब जैसी ऑर्डर मन को करते हैं, मन हमारी बात तुरंत मानता है, फिर कभी भी ये कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि क्या करें मन चंचल है भाग जाता है, नहीं। तो इसलिए अभी आवश्यकता, ये समस्याएं तो आएंगी, दुनिया में अनेकों समस्याएं आती है, शरीर की समस्या है, परिवार की है, संबंधियों की है, मन की समस्या है, तन मन धन प्रकृति की, बहुत, जिन्हें मोटे तौर पर कहा जाता है तीन प्रकार की समस्या होती है, आधि, व्याधि और उपाधि। ये सब समस्याएं इन तीन श्रेणियों में आ जाती हैं, लेकिन सब समस्याओं का एक ही उपाय है, आधि व्याधि उपाधि जितनी समस्याएं इनका उपाय है समाधि। समाधि माने ये नहीं कि कोई जंगल में चले जाए, गुफा में चले जाए और बिल्कुल सबसे नाता तोड़ दे, नहीं है। मन को समाधिस्थ करना, रहे हम परिवार में दुनिया में, लेकिन मन को हम जब समाधिस्थ कर लेते हैं तो सभी समस्याओं का हल हमें अपने आप ही मिलता चला जाता है। तो बस इससे धीरे 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 एक तो मन हमारे वश में होता जाता है और मन को हम जितना जितना विजय प्राप्त करते जाते हैं उतना उतना जगत जीत बनते चले जाते हैं। और बाबा का भी ये देखा, पहले तो बाबा जब हम लोग 1962 में ज्ञान में आए तो बस बाबा बहुत समय देता था, बाबा से मिलते थे, सेवा समाचार सुनाते थे, अपने पुरुषार्थ की बात कहते थे, बाबा उसमें सुन करके राय देता था, सब बाबा समय देता था। लेकिन धीरे धीरे जैसे समय गुजरता जाता था, बीच में हमने देखा 66-67 वगैरह में बाबा के पास जाते थे, बस कुछ लाइन ही बोलते थे, बाबा ये तो बस 2-3 लाइन सुन के ही बाबा कहता हाँ बाबा समझ गया, बिल्कुल वहां जाके बाबा के सम्मुख जाके, अरे बाबा अभी तो हमने कहना शुरू ही किया है कि नहीं नहीं बच्चे, बाबा पूरा समझ गया और फिर बाबा उस बात का समाधान दे देता था। तो देखो बाबा भी धीरे धीरे समेटता जा रहा था और अंत में क्या देखा, हमें ये सौभाग्य मिला जो मैं आपको बता रहा था, 17 और 18 जनवरी 1969 को बाबा के संग संग रहने का। ऐसे तो अनेक बार रहे थे लेकिन इन 2 दिनों में कई बार बाबा से मिलने का, साथ में रहने का सौभाग्य मिला। और इसमें हमने क्या देखा, बड़े गौर से सुनने की बात है, जो मन जीते जगत जीत पर पूरी सिद्ध होती है। बाबा के सम्मुख जाते थे, बाबा से हम ये पूछेंगे, ये बात कहेंगे, बस जैसे ही बाबा के सम्मुख गए, बाबा ने दृष्टि दी और दृष्टि देके ही बाबा कहते, अच्छा बच्चे, अच्छा ये पूछने आए हो, अच्छा ऐसा कर लो ऐसा हो जाएगा। यानी कि हमें एक अक्षर भी बोलने की जरूरत नहीं पड़ती थी, मन में क्या चल रहा है बस बाबा दृष्टि से पढ़ के और तुरंत उसका समाधान दे देता था। ये है मन जीत का लक्षण। क्यों, बाद में हमने बड़ी दीदी जी हैं, दीदी मनमोहनी जी से पूछा एक बार कि दीदी ये बाबा के सम्मुख जाते हैं और ऐसा होता है, तो दीदी ने तब बताया था बहुत अच्छी बात कि देखो जो आत्मा जितना जितना अपने मन के ऊपर विजय प्राप्त करती जाती है, वो आत्मा दूसरे के मन को तुरंत ही पढ़ लेती है, दूसरे के संकल्पों को तुरंत पढ़ के उसका समाधान कर सकती है। जैसे पानी अगर स्थिर हो ना, तो पानी में एक छोटा कंकड़ भी डालेंगे तो क्या होगा, लहरें पैदा होंगी। और जब तक कंकड़ नहीं डाला है, पानी स्थिर है, अगर हम अपना चेहरा भी उसमें देखना चाहे हमें स्पष्ट दिखाई देगा, लेकिन जैसे ही एक कंकड़ डाला, लहरें पैदा हुई, अपना चेहरा स्पष्ट नहीं दिखाई देगा। ऐसे ही अगर हमारे मन के अंदर कोई भी संकल्पों की लहरें हुई, तो हम दूसरे के संकल्पों को पढ़ नहीं सकते, उनके साथ हमारे अपने संकल्प मिक्स हो जाएंगे। और इसीलिए अभी यह आवश्यकता है, जैसे बाबा को देखा अंतिम 2 दिनों में भी मन में कोई भी संकल्प होते थे, बाबा तुरंत पढ़ के समाधान दे देता था। अभी हम सबको इसकी बड़ी आवश्यकता पड़ेगी अंत समय में। क्यों, क्योंकि बाबा ने कहा है कि अंत में ऐसी आत्माएं आएंगी, सब तरफ से दुखी अशांत आत्मा, रोती हुई आत्मा आए, आपके सम्मुख आए, हंसती हुई चली जाए। अशांत आत्मा आए, शांति के सागर में लहराती हुई चली जाए। और दुखी अशांत आत्मा, किसी भी प्रकार के संकल्प लेकर के आत्मा आए कि मुझे ये साक्षात्कार की इच्छा हो, बस आपके सम्मुख आप तो एक ही हैं, आपके सामने चार आत्माएं आई, हर एक अपने अपने इष्ट देव के साक्षात्कार की इच्छा रखता है। कोई राम के साक्षात्कार, कोई कृष्ण का, कोई हनुमान का, कोई देवी का, ऐसे अलग अलग इच्छाएं लेकर आएंगे। हम तो एक ही हैं, लेकिन साक्षात्कार की चाबी किसके पास है? बाबा के, शिव बाबा के पास। हमारे एक होते हुए भी बाबा, अनेक जो भक्त आत्मा आएंगी हमारे द्वारा, उनकी इच्छा के अनुरूप जो भी इष्ट देव के साक्षात्कार की इच्छा लेके वो आए हैं, बाबा हमारे द्वारा उनको वो ही साक्षात्कार कराएगा और वो आत्माएं अंत में तृप्ति का अनुभव करेंगे। तो इसलिए अभी आवश्यकता ये है कि हम अपने तन और मन इन दोनों को संपूर्ण रीति से पवित्र रखें, शुद्ध रखें। और अब देखो, ब्रह्मा बाबा हैं, थी तो कृष्ण की आत्मा, बाबा से सबको कृष्ण का, विष्णु का, नारायण का, स्वरक का साक्षात्कार होता था। जो भी बाबा के सम्मुख आते थे, बस रास रास खेल कूद, बाबा के दृष्टि लेते ही तुरंत सतयुग में पहुंच जाते थे। आप सबने ये भी पढ़ा है कि यज्ञ के इतिहास में पढ़ा होगा, जीवन कहानी में, यज्ञ के शुरू में ही, क्योंकि कई लोग बाबा के ज्ञान के विपरीत भी होते थे, तो एक व्यक्ति, हाँ सरदार जी, बहुत विपरीत था, और उसने ये रखा, उसे कहा गया और उसने कि मैं बाबा को बस नुकसान पहुंचाऊंगा और मारूंगा, और वो छुरा लेकर के गया बाबा के पास। बहन से कहा कि मुझे बाबा के दर्शन करने हैं। अब बहन ले गए और बाबा के सम्मुख बैठा के, बहन जी तो अपने काम से चले गए अलग, और जब उन सरदार जी ने देखा कि अलग है, अकेले हैं बाबा और हम, तो उसने छुरा निकाला और बाबा पर वार करने ही जा रहा था। क्या साक्षात्कार हुआ उसे? उसे उसके इष्ट देव गुरु नानक देव का साक्षात्कार। अब बाबा है तो कृष्ण की आत्मा, नारायण की आत्मा, लेकिन भक्त के जिसमें उसकी श्रद्धा होती है, भावना होती है, बाबा हमारे द्वारा वो ही साक्षात्कार कराता है। तो उसके द्वारा जैसे ही साक्षात्कार हुआ, बस वो तो हक्का बक्का रह गया, अवाक रह गया, उसको तो आंखों से आंसू बहने लगे, पश्चाताप होने लगा, बाबा के चरणों में पड़ गया। अरे गुरुजी, मैं क्या करने जा रहा था आपको नुकसान पहुंचाने, ओहो मैं कितना पापी हूं, और बस मुझे माफ करो, और इस प्रकार से उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। और बस उसके बाद छुरा बाबा के चरणों में रख करके वो व्यक्ति चला गया। ये बाबा की जीवन कहानी में भी, जो जीवन कथा है उसमें भी लिखा है। भाव क्या है कि जो भी भक्त आएंगे अपनी इच्छा के अनुरूप, साक्षात्कार हमारे द्वारा जब उन्हें होगा, तब उन्हें संतुष्टि का बहुत जो एहसास होगा, उसके बाद वो आत्माएं जाएंगी और बस उनका रूप परिवर्तन हो जाएगा। लेकिन ये कब होगा? जब हमने, जो बाबा कहते हैं ज्वालामुखी योग, वो ज्वालामुखी योग, वो उसका अभ्यास किया हुआ होगा। ज्वालामुखी है, ज्वाला होता है ना, कोई भी चीज होती है उसको अगर अग्नि में डाला जाता है उसका रूप परिवर्तन हो जाता है। तो ऐसे ही हमारी ऐसे ज्वालामुखी योग की स्थिति हो, जो हमारे सम्मुख लोग आए उनका रूप परिवर्तन हो जाए, जैसा हम लोग अनुभव करते थे, बस मन में बहुत बात लेकर आ रहे हैं, बस रूप परिवर्तन हो जाता था और सब जैसे प्रश्नों का समाधान मिल जाता था, और फिर संतुष्ट होके हम आत्माएं चले जाते थे। आज इस स्थिति की आवश्यकता है जो बाबा चाहता है। और ये कब होगा? हम कब दूसरे की इच्छाओं को पढ़ सकेंगे, जान सकेंगे? जब हम खुद इच्छा मात्रम अविद्या। बाबा यही चाहता है कि बस अब हमारे अंदर कोई भी इच्छा ये भी न रहे, इवन सेवा की भी इच्छा वो भी होती रहेगी, लेकिन इच्छा मात्रम अविद्या, जितना हम होते चले जाएंगे उतना उतना हम दूसरों की इच्छाओं को पढ़ करके उनकी इच्छाओं को पूर्ण कर सकेंगे। अभी अंत समय हमें इन सब पुरुषार्थ की भी पूरी की पूरी आवश्यकता है। और क्या हो अभी आवश्यकता है, जगत जीत जब हम कहते हैं, जगत में क्या क्या है, हा? जगत में तो सब है, पशु पक्षी जीव जंतु प्रकृति मनुष्य सब चीज है। तो हम सब खुद भी योग कर रहे हैं और सेवा भी कर रहे हैं, दूसरों को योगदान भी दे रहे हैं। तो बाबा अब क्या चाहता है, एक जो बड़ी से बड़ी सेवा, जो समय प्रति समय हम सब के सम्मुख पेपर के रूप में आने वाली है। कौन से पेपर? पेपर तो बाबा ने अनेक बताए हैं, हम सबके सम्मुख आते भी हैं। बस पेपर वही अनेक प्रकार के, हमारे पुराने स्वभाव संस्कार का पेपर है, हमारे संबंध का पेपर है पुराने। लेकिन जो बाबा ने कहा है दो बड़े से बड़े और जो पेपर हैं, वो हैं, एक है शरीर का पेपर, जब बीमार होते हैं। इसीलिए बाबा के समय प्रति समय मुरली में कई बार ये आता है, कभी भी अपने बीमारी से शरीर से हम परेशान ना हो। यही तो शरीर माध्यम है जिससे हमारा पुरुषार्थ हो रहा है। कभी भी ये स्वप्न में भी संकल्प नहीं आना चाहिए मेरा ये शरीर छूटे। कई बार बहुत दुख से, कई बार इन चीजों से हम परेशान हो जाते हैं। तो बाबा ने कहा नहीं, बिल्कुल नहीं। बाबा को भी हम देखते थे, ब्रह्मा बाबा को, बाबा को कई बार खांसी आती थी, खांसते खांसते बाबा काफी देखने में आता था जैसे बहुत खांसी तकलीफ हो रही है, लेकिन बस दूसरे ही क्षण इधर खांसी आई। कई बार हंसी में बाबा कहते थे, बाबा शिव बाबा से मैं वार्तालाप करता हूँ, बाबा मुझे मेरी इस सखी से छुड़ाओ, हाँ ये खांसी मेरी सखी है, बस मेरे साथ रात दिन लगी रहती है, पीछा नहीं छोड़ती, मुझे इस सखी से छुड़ाओ। शिव बाबा क्या बोलता था, बच्चे ये तो तुम्हारा अपना कर्म भोग है, अगर मैं तुम्हें छुड़ाऊं तो और सभी बच्चों को छुड़ाना पड़ेगा। तो इसीलिए हरेक का अपना अपना कर्म भोग, अपने अपने हिसाब से हरेक को चुकतू करना है। और बाबा कैसे करता था देखो सुनो, बस तकलीफ हो रही है, खांसी आ रही है, दूसरे ही क्षण बाबा ऊपर मधुबन में आप गए होंगे या जाएंगे देखेंगे, चार धाम में हिस्ट्री हॉल है और हिस्ट्री हॉल में ही बाबा क्लास कराते थे। वहां पर पास में ही ट्रांसलाइट का एक चित्र रखा रहता था, कृष्ण का, लक्ष्मी नारायण का भी। तो बस बाबा कहता ओ अभी खांसी आ रही है, तकलीफ हो रही है, लेकिन दूसरे ही क्षण रे बच्चे देखो अभी इस पुराने शरीर में पुरानी दुनिया में कितना परेशान करती है, लेकिन कल बाबा जाके ऐसा विष्णु कृष्ण बनेगा, ओ कल बाबा जाके ऐसी नई दुनिया का मालिक बनेगा, बच्चों को बहुत खुशी होनी चाहिए, और बस खुशी इतनी हो जो गम को खा जाए। और बच्चों को खुशी में क्या होना चाहिए, खुशी में खग्गियां मारनी चाहिए। हाँ जानते हैं क्या है खग्गी, ये सिंधी शब्द है, बाबा ने एक बार करके बताया, तो मैं बताता हूँ कि बस बच्चे ओ खुशी हो, कल बाबा जाके ये बनेगा, हो बाबा के चेहरे पर एकदम रौनक, एक क्षण पहले खांसी हो रही थी, दूसरे क्षण हो कल बाबा जाके है, ऐसा है बाबा ना। बच्चों को भी सब, हम लोगों को होता था पहले जब खांसी आती थी, वो बाबा की खांसी कितना तकलीफ हो रहा होगा, लेकिन दूसरे ही क्षण जैसी बाबा बस खुशी में आ जाता था, हम सब लोग भी खुशी में पूरा आ जाते थे। ये है जैसे कि ना अपनी स्वस्थिति से परिस्थिति को बदलना। अभी तो हम परिस्थिति के प्रभाव में आ जाते हैं, बाहर की परिस्थिति हमारी स्वस्थिति को प्रभावित कर देती है, लेकिन होना यही चाहिए कि कभी भी बाहर की परिस्थिति हमारी स्वस्थिति को प्रभावित न करे, हमारी अपनी स्थिति इतनी मजबूत हो जो बाबा को देखते थे बस अरे बच्चे कल बाबा जाके ऐसे बनेगा और इस तरह बस बाबा खुशी में आ जाता था। और क्या बाबा को तो ये मन जीते जगत जीत। इस तरह धीरे धीरे मन के संकल्पों को हम इतना मोल्ड करना सीखें कि जब भी हम चाहें उस वक्त मोल्ड करें और तुरंत ही बस बाहर की परिस्थिति को हम बदल दें। और क्या होता था बाबा को कई बार देखते थे बस अभ्यास पार्टी आती थी जैसे अभी दादियों से मिलने के लिए समय लेते हैं ना भाई 10 बजे ये पार्टी मिले बम्बई की 10:30 बजे ये कलकत्ता की 11 बजे दिल्ली की आदि आदि बस हर एक तो ऐसे ही बाबा से उस समय समय लिया जाता था। बाबा मिलते थे जितनी पार्टी होती थी कभी बाबा अपने कमरे में 2-3 लोग होते थे तो मिलते थे कभी और थोड़े ज्यादा हुए 4-5-6 हुए तो झोपड़ी में मिलते थे और जब और पार्टी होती थी 10-15-20 की उस समय तो 15-20 की पार्टी बहुत बड़ी मानी जाती थी और तब बाबा हिस्ट्री हॉल में मिलते थे। तो बस बाबा जैसे अपने कमरे में बैठे हुए हैं एक पार्टी गई दूसरी पार्टी के आने में समय है बस बाबा बैठे हैं अपने में ही मस्त और बस आंखें खुली हुई यहीं बैठे हैं लेकिन बुद्धि से बाबा जैसे कहीं और होता था। जो बाबा ने हम बच्चों को भी कहा है बुद्धि से अपनी पांचों स्थितियां जो बताई हैं बाबा ने उनमें रमण करो। जो बाबा ने अनेक स्थान बुद्धि को बताए हैं वहां पर कभी सूक्ष्म वतन कभी परम धाम कभी स्वर्ग नई दुनिया कभी किस प्रकार से संगम योग फरिश्ता स्वरूप आदि आदि बस। और दिखता था पार्टी लेके बहन आती थी तो कई बार बाबा आंख खुली हुई है बिल्कुल अपने ध्यान में मग्न बस टीचर आती थी बाबा बाबा तो बाबा को जैसे सडनली चेतना सी जर्क कभी और अच्छा बच्ची आ गए आओ आओ तो जैसे देह में आने का अभ्यास और देह से न्यारा होने का अभ्यास ये बाबा को इतना पक्का था कि बस जब चाहे बाबा देह से न्यारा हो जाता था और जैसे ही देह से न्यारे हुए वो बस बाबा अपने अनेक स्वरूपों की स्मृति में खो जाता था और फिर देह में आकर जो भी पार्ट बजाना है सबसे मिलना जुलना टोली देना और हालचाल पूछना सब। तो इसी तरह ये अभ्यास हमारा भी इतना पक्का होता जाए कि जब चाहे हम देह में आए जब चाहे हम देह से परे हो जाए ये हमारे जैसे मन को अभी हम चाहते हैं परे होना लेकिन मन चंचल होता है मन भागता है कोई कार्य में व्यवहार में संबंधों में इस कारण से स्थित नहीं हो पाते हैं। तो अभी आवश्यकता इस बात की इस अभ्यास की कि जब चाहे हम देह में आए जब चाहे हम देह से न्यारे हो जाए ये एक और पुरुषार्थ है मन जीते जगत जीत का। दूसरा बाबा ने कहा है पेपर एक तो शरीर का पेपर और दूसरा एक बड़ा पेपर है जो अपने परिवार का पेपर। कई बार क्या होता है हम परिवार के किसी भी भाई या बहन की कोई बात देखते हैं तो हम लोगों को संकल्प चलते हैं अरे ऐसा क्यों ये भाई या बहन अभी 25 साल 30 साल 40 साल से ज्ञान में है अभी भी इनमें ये बात क्रोध या ये बात। बस हमारी अपनी अवस्था कभी डगमग होने लगती है परिवार का पेपर। लेकिन बाबा ने क्या कहा है हम जब भी किसी को देखें केवल एक काल की दृष्टि से ना देखें वर्तमान काल बल्कि तीनों कालों की दृष्टि से देखें। अरे ये आत्मा अभी ये पार्ट बजा रही है लेकिन ये वही आत्मा है विश्व महाराजन आत्मा और अभी फिर से ये बनने वाली है। और बाबा ने कहा है जितने भी मेरे बच्चे हैं जितने मेरे बच्चे हैं सब मेरे चुने हुए बच्चे हैं मेरा आखिरी में आखिरी बच्चा भी जो है ना वो वर्तमान समय के राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री उनसे भी ऊंच है। इसीलिए भगवान का सिलेक्शन कभी भी गलत नहीं हो सकता। और अगर हम ये संकल्प चलाते हैं, अरे ये भाई का ये पार्ट, ये बहन का ऐसा पार्ट, ये क्यों ऐसा है, तो कभी भी हमारे मन में ये संकल्प चलना नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि भगवान की चुनी हुई आत्मा है, भगवान का सिलेक्शन है। हाँ, अपने समय पर वो राइट पार्ट और बजाएगी, उसके द्वारा भगवान की प्रत्यक्षता होगी। कोई फिल्म होती है, नाटक ड्रामा होता है, उसमें भी सारे पार्टधारी सब पार्ट एक जैसा थोड़ी बजाते हैं, अपने अपने। कभी कोई नाच गाने का पार्ट होगा, कभी कॉमेडियन का पार्ट होगा, कहीं रोने का, कहीं पर हंसने का, आदि आदि अलग अलग पार्ट। तभी तो वैरायटी ड्रामा है, तभी तो फिल्म या ड्रामा बहुत बढ़िया बनता है। ऐसे ही आज वो आत्मा किसी कमजोरी के वशीभूत होके कोई ऐसा पार्ट बजा रही है जो कि पूरा मर्यादा के अनुकूल नहीं है, लेकिन हमारे मन में यही संकल्प, हम उसको तीनों कालों से देखें, ये वही आत्मा है जो भगवान की चुनी हुई, और इसके द्वारा बाबा को बहुत प्रत्यक्षता अपनी करानी है समय पर। इसके द्वारा ऐसा पार्ट बजेगा जिससे बाबा की प्रत्यक्षता होगी, तो हमारे भी संकल्प कोई नहीं चलेंगे, और हमारी सकाश के द्वारा, शक्ति के द्वारा उस आत्मा की भी स्थिति चेंज होगी, और वो आत्मा अपनी कमजोरी से सहज ही बाहर आ जाएगी। तो एक ये देखते चले हम कि परिवार से कोई भी आए, किसी का भी, उस पे हमारे मन में प्रश्न न हो। तब मैं अंतिम दिन की बात बताता हूँ आपको, 18 जनवरी की। 18 जनवरी को पहले बाबा प्रातः क्लास में आए, चूंकि हमें ये दृश्य देखने का सौभाग्य मिला, तो उस दिन बाबा ने कोई मुरली नहीं चलाई। बाबा आते थे, बस पहले योग कराते थे, तब तो हमारे अपने गीत नहीं होते थे, यही गीत जो फिल्म वाले हैं उनके जो अनुरूप गीत होते थे, कोई तकदीर जगा कर आई हूँ, या महफिल में जल उठी शमा, जिनसे हमारा ज्ञान सिद्ध होता था वो थोड़ा बचता था, फिर एक दो लाइन कुछ बचते थे, उसके बाद सफेद लाइट होती थी, फिर बाबा मुरली चलाते थे। लेकिन उस दिन 18 जनवरी की सुबह बाबा को बस यही संकल्प रहा कि आज मैं बच्चों को शक्ति से भर दूं, सकाश दे दूं, और बस बाबा सकाश ही देता रहा। पूरे टाइम बाबा ने योग कराया, 18 जनवरी की सुबह बाबा ने मुरली नहीं चलाई। अच्छा, मीठे मीठे बच्चों को याद प्यार गुड मॉर्निंग कह के बाबा चले गए। बाकी सारा दिन भर बाबा ने अपने नियमित कार्य किए, बस यीशु दादी से कहा जितने भी पत्र लिखने हो लिखा लो, कोई पेंडिंग ना रहे, सब करके शाम का समय हुआ। मधुबन में हमेशा क्लास होती है रात्रि को लगभग 9 बजे, साकार बाबा के टाइम से ही ये समय 8:45 चला आ रहा था, लेकिन उस दिन बाबा ने लगभग 7 बजे ही एक जो हमारे भाई थे जमुना प्रसाद भाई, उन्हें बुला के बोला कि आज बाबा जल्दी क्लास कराएगा, आज सबको ये बता दो। बाहर हिस्ट्री हॉल के बाहर एक घंटा रखा रहता जैसे स्कूल में होता है ना, उन्होंने वो घंटा बजाया, सब लोग इकट्ठे हुए, उन्होंने बता दिया भाई आज बाबा जल्दी क्लास कराएगा, सब लोग भोजन वगैरह करके 7:30-8 तक वहाँ आ जाओ। तो बस सब लोग, थोड़े लोग हुआ करते थे, भोजन करके वहाँ पहुँच गए, और बाबा अपने समय पर उस समय क्लास में आए। बिल्कुल बाबा का फरिश्ता रूप लग रहा था, आंखों में जैसे बस 2000 पावर के बल्ब जैसे जल रहे हैं, फरिश्तों जैसी चाल, वैसे तो हमेशा ही होती थी, लेकिन उस दिन तो विशेष बाबा ऐसा लग रहा था जैसे किसी और धरा से, किसी और जगह से इस धरा पर अवतरित आत्मा है। आए, बाबा ने क्लास कराया, और उस दिन बाबा को एक बार भी खांसी नहीं है। हालांकि बाबा की तबीयत कुछ ठीक नहीं चल रही थी, बहुत सर्दी थी, जनवरी का महीना था, लेकिन उस दिन बाबा को एक बार भी खांसी नहीं आई, गला साफ करने की जरूरत नहीं पड़ी, और उस दिन की आप मुरली सुनो, वो कैसेट अभी भी 18 जनवरी की भरी हुई है और वो कैसेट अभी भी ऊपर भी वहां मिलती है। ओम शांति भवन के नीचे जो वीडियो सेक्शन है, ऑडियो सेक्शन है 18 जनवरी की, तो आप देखेंगे एक बार भी बाबा को खांसी नहीं आई, गला साफ करने की जरूरत नहीं पड़ी। वो इस बात का प्रतीक है कि जब आत्मा कर्मातीत अवस्था को प्राप्त कर लेती है, निकट होती है, तो शरीर के सब कर्म भोगों के ऊपर योग बल संपूर्ण रीति से विजय प्राप्त कर लेता है। बस उसके बाद बाबा उठ के, क्लास पूरा हुआ, उठ के बाबा गए और बाबा जाके वहां पर बस क्लास के बाहर गए, अच्छा मीठे मीठे बच्चों को याद प्यार गुड नाइट कह के अच्छा बाबा बच्चों से छुट्टी लेता है। ये शब्द बाबा ने रिपीट किए, ये कभी भी बाबा ने कहा नहीं, पहले कभी भी नहीं, उस दिन ही अच्छा बाबा बच्चों से छुट्टी लेता है, विदा लेता है। तो जब हम भी कर्मातीत अवस्था को प्राप्त करेंगे तो जैसे पहले से ही ना हम सबको आवास, जैसे भक्ति मार्ग में कहते हैं भीष्म पितामह, उसको भी इच्छा मृत्यु का वरदान था, बस हमें भी ये होगा जैसे निकट हमारी कर्मातीत की, हाँ बाबा अब हमारा पार्ट ये पूरा हुआ, हम आए आपके साथ चले, बस अपनी स्व इच्छा से जैसे कि हम बाबा के पास जा रहे हैं ये पार्ट बजा के। उस दिन बाबा ने यही कह के बाबा गए अपने कमरे में और बस वहाँ दादी प्रकाशमणि जी के हाथों में हाथ, नैन मुलाकात करते हुए जैसे बाबा ने छुट्टी दी। लेकिन उस दिन की विशेषता कि बाबा ने शरीर छोड़ा 18 जनवरी को रात्रि को, लेकिन वो शरीर रखा रहा 19 को भी सारा दिन, 19 की रात, 20 का सारा दिन, 20 की रात, और 21 को भी दोपहर के बाद उसका संस्कार किया गया, लेकिन वो शरीर वैसा ही चमकता रहा, बिल्कुल भी इवन 65-70 घंटे के बाद भी बस वैसा चमकता हुआ शरीर, कोई दुर्गंध नहीं। और शरीर के अंदर नहीं तो जब आत्मा चली जाती है तो जैसे अकड़ जाता है, बिल्कुल जब बाबा को स्नान भी कराया उस दिन तो कोई भी ऐसा विशेष अकड़न नहीं, ये बिल्कुल प्रकृति के जैसे नियमों के भी ना बस अनुरूप बात नहीं है। कई डॉक्टरों से पूछा, डॉक्टर कहते हैं ऐसा तो नहीं होता, लेकिन हमें तो स्वयं देखने का ये सौभाग्य मिला है, देखा। ये है प्रकृति जीत का प्रतीक, क्योंकि जब जगत जीत कहते हैं, जगत के अंदर ये प्रकृति तो आती है पांच तत्व, तो बाबा ने भी पुरुषार्थ करके प्रकृति को योगदान करके इतना प्रकृति जीत बाबा बन गए थे कि ये पांच तत्वों ने भी ना बिल्कुल अंत तक पूरा का पूरा साथ दिया और न शरीर में कुछ भी कालापन आया, बिल्कुल वैसा ही चमकता हुआ शरीर, लगता था बाबा जैसे सोए हुए हैं और बस बाबा अभी उठ के कहेगा आओ मेरे मीठे बच्चे, आओ बच्चे, प्यारे बच्चे, ऐसा आभास होता है। तो ये प्रकृति जीत हम लोग भी कैसे बने, बाबा ने कहा है हम लोग ये तो करते ही हैं, हा? योग का दान प्रकृति को जो बाबा ने कहा है, लेकिन हम प्रकृति को अपना मित्र भी बना लें, और जितना हम प्रकृति को अपना मित्र बना लेंगे अंत समय में ये प्रकृति साथ देगी। नहीं तो बाबा ने बताया है प्रकृति की बहुत हलचल होगी, जमीन हिलेगी, तूफान आएंगे, बाढ़ आएगी, पानी, अति अग्नि, बहुत कुछ होगा। जमीन हिली और अगर बस ऊपर से छत गिर गई, दीवार गिर गई, हम उसके अंदर दब गए, तो ये तो इच्छा मृत्यु नहीं हुई ना, प्रकृति के वशीभूत होके उसके अगर हमें प्रकृति के उसमें शरीर छोड़ा तो पता नहीं अंत में कैसे होगा। अंत मते सो गते है, उस समय चारों तरफ दर्द हो रहा होगा, खून निकल रहा होगा, हल्ला बच रहा होगा, जब ऐसी प्राकृतिक आपदा आती है यही होता है। इसका बचने का बहुत अच्छा साधन बाबा ने बताया है कि प्रकृति को हम अपना मित्र बना लें। अब प्रकृति जितनी हमारी मित्र बनती जाएगी, मित्र जो है मित्र की सदैव रक्षा करता है, मित्र कभी मित्र के प्राण नहीं लेता। प्रकृति के साथ हम अपने गुणों को मिलाते चले। मानो पानी है, हाँ, जल है, जल का सबसे बड़ा गुण कौन सा है? जल एडजस्टमेंट का, फ्लेक्सिबिलिटी। अभी जल जैसे इस गिलास में सेट हो गया, कटोरी में लो कटोरी में सेट हो जाएगा, चम्मच में लो चम्मच में, थाली में लो थाली में। इतना फ्लेक्सिबिलिटी हो कि हम हरेक के साथ सेट होकर के चल सके। हम ये ना कहें कि फलाने भाई के साथ सेट होना तो मुश्किल है, फलाने के साथ आसान है, ये हो सकता है। बस नहीं, जल की तरह अगर हमने इतना एडजस्टमेंट का गुण धारण किया होगा, फ्लेक्सिबिलिटी, जल की तरह हमने शीतलता धारण की होगी, जल की तरह हम, देखो जल बहता है ना, तो जल के सामने बड़ा पत्थर भी आ जाए तो जल रुकेगा नहीं, जल अपना रास्ता बना के निकल जाएगा। ऐसी हमारे सामने भी बाधाएं आए, समस्याएं, वो हमें रोक ना सके, हमारी प्रोग्रेस को हम अपना रास्ता खुद बना के आगे बढ़ते चलें। अनेक गुण हैं, आप देखोगे जल के, वो गुण धारण करेंगे तो कभी भी, चाहे जितनी सुनामी आएगी, बाढ़ आए, कभी भी जल हमारी मृत्यु का कारण नहीं बन सकता। तो एक तो ये लक्ष्य, अच्छा, तो इस तरह प्रकृति के अपने अलग अलग जो गुण हैं, ये हम धारण करते चलें। अब योग का समय हो रहा है, हम सभी हरेक तत्व का ये देखें कि किस तरह हम मंथन करिएगा। अभी हम सब लोग 2 मिनट योग में बैठ के आज के इसको समाप्त करते हैं। ओम शांति।